नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। केंद्र ने कहा, खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में भारत के मानदंड वैश्विक स्तर के। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर हमले के संबंध में सुरक्षा बलों ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का देशभर में आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 7 मई को 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर वोट डाले जाएंगे। सभी दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के इटावा और धौरहा में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी भी आज उत्तर प्रदेश के बदायूं में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कौशाम्बी में रैली करेंगे। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के कारण ही 80 करोड़ लोगों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन मिला और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिला। श्री शाह ने आज आंध्र प्रदेश के हिन्दूपुर लोकसभा क्षेत्र के धर्मावरम में एक चुनाव सभा में कहा कि देश में 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन दी गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विकास की अपेक्षा की है और राज्य में निवेश आकर्षित करने में विफल रहे हैं। श्री शाह ने राज्य के समग्र विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू जैसे अनुभवी नेताओं को चुनने की अपील की।
मैं आपको एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, आप आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी की सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार बना दीजिए। 2 ही साल में पोलावरम प्रोजेक्ट को हम समाप्त करकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे।
श्री शाह ने देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। श्री अमित शाह आज तेलंगाना में आदिलाबाद, निजामाबाद और सिकंदराबाद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज उत्तरी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। उड़ीसा में इस महीने की 13 तारीख से 4 चरणों में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वोट डाले जाएंगे। श्री नरेन्द्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वे कल बहरामपुर और नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस ने उड़ीसा की पुरी लोकसभा सीट पर जयनारायण पटनायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने पार्टी से चुनाव के लिए धन न मिलने की शिकायत करते हुए अपना टिकट वापस कर दिया था, जिसके बाद उनकी जगह जयनारायण पटनायक को टिकट दिया गया है। इस बीच कांग्रेस ने उड़ीसा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने जलेश्वर विधानसभा सीट से देवी प्रसन्न चंद के स्थान पर सुदर्शन दास को टिकट दिया है। अक्षय आचार्य नीलगिरी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पूरी विधानसभा सीट पर सुजीत महापात्रा के स्थान पर पार्टी ने उम्मा बल्लव्रत को टिकट दिया है। आठगढ़ से सुदर्शन साहू और आठमलिक से हिमांशु चौलिया पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 9 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो रहा है। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 9 संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में 7 मई को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 1,77,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें से 1,68,00,000 से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जा चुकी है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
असम में तीसरे चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में चार लोकसभा सीटों पर कुल 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व सरमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार बोरा, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल सहित कई नेता आज चुनाव सभा कर रहे हैं। इस बीच दूरदराज के इलाकों के लिए आज मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। नलबाड़ी जिले के दूरदराज के इलाकों में नाव, बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों की सेवाएं ली जा रही हैं। तीसरे चरण में 81 लाख से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम कर्नाटक की गुलबुर्गा सीट की जानकारी दे रहे हैं, जिसे अब कलबुर्गी कहा जाता है। ये क्षेत्र भीमा नदी और तूर दाल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कलबुर्गी हाथ से बने बुने कपड़ों और इलकल साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। ये निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इस सीट पर 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट।
गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र उत्तर कर्नाटक में स्थित है और 1991 वर्ष में इसकी रचना हुई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पूरा राजनीतिक जीवन यहां बीता है। उन्होंने यहां से 2019 और 2014 में जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में खड़गे के दामाद राधा कृष्ण दुडमणि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी से हाली सांसद डॉ जाधव उम्मीदवार रहेंगे। इस क्षेत्र में 22,68,944 मतदाता सूची में हैं। मई 7 तारीख को चुनाव के लिए 2,167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
निर्वाचन आयोग सिकंदराबाद और हैदराबाद में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 180 विशेष मतदान केंद्र स्थापित करेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना है। इनमें से 75 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में हैदराबाद में केवल 39.49% और सिकंदराबाद में 44.99% मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इन प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के महापर्व के अवलोकन के लिए आमंत्रित किया था। ये प्रतिनिधि 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। उनकी यात्रा इस महीने की 9 तारीख को समाप्त होगी। महाराष्ट्र में चौथे चरण के चुनाव के लिए 11 लोकसभा सीटों पर कुल 298 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, मावल, पुणे, श्रीथूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड लोकसभा सीटें शामिल हैं। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर कल किए गए हमले के सिलसिले में 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना में वायुसेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ और 5 अन्य जवान घायल हो गए थे। गिरफ्तार लोगों पर हमले में आतंकियों की मदद की आशंका है। एक रिपोर्ट।
गिरफ्तार लोगों पर हमले में आतंकियों की मदद की आशंका है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान आतंकियों की धरपकड़ के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकियों की गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त जवान विक्की पहाड़े के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी सहित सभी वायुसेना कर्मी राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान के लिए श्री पहाड़े को नमन करते हैं। समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में भारत के मानदंड वैश्विक स्तर के हैं और अलग अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग अलग मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी कर मीडिया की खबरों को तथ्यहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है। एक रिपोर्ट।
मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जड़ी बूटियों और मसालों में 10 गुना तक कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति देता है। कृषि मंत्रालय की केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति कीटनाशकों का विनियमन करती है। इस समिति में 295 से अधिक कीटनाशक पंजीकृत हैं। मसालों में उपयोग के लिए 139 कीटनाशक पंजीकृत हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कीटनाशकों के अनुपात को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लगातार संशोधित किया जाता है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति मीट्रिक टन के साथ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस वर्ष रबी फसलों के अनुमानित अच्छे उत्पादन और सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान के साथ खरीफ फसलों की अच्छी खरीद, बाजार की मौजूदा स्थिति और प्याज की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज आयोजित की जा रही है। देशभर के 557 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर साथ ले जाने का निर्देश दिया है। जिन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और रोल नम्बर बार कोड न हो उन्हें दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वोत्तर भारत में तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ बुछार पड़ने और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं केरल और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में ऊंची लहरों को देखते हुए केरल में आज रात 11:30 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। लहरों के कारण केरल में तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर जमीन कटाव की खबरें हैं, जिसके कारण इन इलाकों के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों को इन इलाकों में न जाने का परामर्श दिया गया है। मछुआरों से समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ब्राजील के रियो ग्रैंड डू सुल में मूसलाधार बारिश से मरने वालों की संख्या 60 हो गई है। हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार 67 लोग लापता हैं। पिछले 80 वर्ष में सबसे भीषण बाढ़ से 23,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। आज एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होगा। प्रतियोगिता में कल मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 4 विकेट से हरा दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में चर्चा प्रसारित करेगा। इसका विषय है साइबर सुरक्षा संबंधी चिंता और डिजिटल जागरूकता की आवश्यकता। कार्यक्रम में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के विशेषज्ञ अखिलेश गौड़ और वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉ गुलशन राय साइबर खतरों, डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के तरीकों के बारे में श्रोताओं को जानकारी देंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। श्रोता अपने प्रश्न हमारे टेलीफोन नंबर 011-23-42-10-50 और 011-23-31-44-44 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-23-42-10-50 और 011-23-31-44-44 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। केंद्र ने कहा खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त कीटनाशकों की मात्रा के संबंध में भारत के मानदंड वैश्विक स्तर के। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर हमले के संबंध में सुरक्षा बलों ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का देशभर में आयोजन। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।